रात्रि क्लास चल रहा था 28 जुलाई 1968। चौथे पेज की आदि में बात चल रही थी तुम बच्चों को बाप ने उतरने और चढ़ने का काम दिया हुआ है और ये तुम्हारा खेल है। खेल को मैं बंद नहीं कर सकता, ऐसे तो ये बेहद का अनादि खेल है और ये अनादि खेल चलता ही रहता है। इस खेल में है उतराई और चढ़ाई, इस बात को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। जितना यज्ञ की सर्विस करेंगी, अपने अंदर दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ही ऊंचे पद पावेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है, ये तुम्हारा व्यापार है, तुम व्यापारी हो, बाप भी व्यापारी है। कोई बिरला बाप से व्यापार करे और उनकी श्रीमत पर चले, रोज अपना पोता मिल देखो, कितना याद किया, कितना दैवी गुण धारण किया। ये पोता मिल रखना है तुम बच्चे, बाप से भी अच्छा पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि तुम अपना खाता रखते हो, ये दादा खाता नहीं रखते हैं। परंतु बाप को इनकी पक्की खातिरी है, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा सुनते ही रहते तो ये पोता मेल रख करके क्या करेंगे। इनकी तो सर्टेन है, सूक्ष्म वतन में भी देख करके आते हैं, अपना पोता मेल रखना अच्छा है, फायदा देखते रहेंगे तो खुश होते रहेंगे। इतनी जब मेहनत करो तो खुशी का पारा भी चढ़े। इसलिए कहते हैं कि अपना रजिस्टर रखो। यूं तो हरेक अपना पोता मेल देख सकते हैं, कहां हमारी क्रिमिनल आई धोखा तो नहीं देती है। हम कोई की देह के नाम रूप में तो नहीं फंसते हैं। पुरुषार्थ करके देह के नाम रूप से छूटना है और देही अभिमानी बनना है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कब है? कब की बात बताई, 68 की बात बताई, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। जो जितना देरी से आवेंगे उनको थोड़ा घाटा पड़ता जाएगा। कहां देरी से आवेंगे, ज्ञान में देरी से आवेंगे उनको घाटा पड़ता जाएगा। मुरली में तो बोला है, क्या बोला है, लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। तो देरी से आने वाले घाटा खावेंगे या फास्ट जावेंगे हैं? फास्ट वो जावेंगे जो यज्ञ के आदि में भी पहले पहले आए होंगे। तो देरी से आए या पहले आए, क्या कहेंगे? तो पहले आ गए, घाटा पड़ने की बात ही नहीं है। पुराणों को तो बाबा रोज पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे पुरुषार्थ भी होता नहीं है। पुरुषार्थ नहीं होता है तो बाप को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तकदीर में ही नहीं है। बहुत बच्चियां कहती हैं, बाबा हम याद भूल जाते हैं। अरे इसमें बाप क्या करे? जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद रहती है या नहीं रहती है? याद रहती है। और लगाव पूर्वक देखी जाती है तो और ही जास्ती याद रहती है। अब कोई कहते हैं हमें याद ही नहीं आता, तो बाबा क्या करेंगे? सिखलाते जरूर रहते हैं। अब सीखो या न सीखो, कोई भी सामने आवे बोलो वेद का बाप पतितों को पावन बनाने वाला है, उस पतित पावन बाप को याद करेंगे तो पावन बन करके पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पैगाम सभी को देना है। वेद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, भारत स्वर्गवासी था, अभी भारत नरकवासी है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, जब तक बाप घर नहीं ले जावेंगे तब तक स्वर्ग में भी कोई नहीं जा सकता। घर जाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए सब नंबरवार पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। अभी भी कल पहले मिसल पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ के बगैर कोई रह भी नहीं सकता है। कुछ न कुछ पुरुषार्थ जरूर किया जाता है और हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। सोने के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है, फिर सवेरे उठ करके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है और सबसे जास्ती पुरुषार्थ कराने वाला है ऊंचे से ऊंचा बाप। वो आकर के तुम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। नाम ही है पुरुषार्थ। पुरुष आत्मा को कहा जाता है, आत्मा के अर्थ कल्याण कराने वाला एक बाप ही है, बाकी तो देवान बढ़ाने वाले हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम भगवान के साथ रहते भी हैं। और हमको निराकारी दुनिया में आना जरूर है, भगवान पढ़ाते हैं तो हमको भगवान भगवती कहलाना चाहिए। परंतु फिर भगवान भगवती तो साकार में चाहिए ना। लेकिन साकार में भगवान भगवती कहना रांग हो जाता है। क्यों क्यों रंग हो जाता है? क्योंकि भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान के साथ भगवती होने की बात नहीं है। हाँ, भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं, तो कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य कहा ही उनको जाता है जिनका मन चलाए मानो। भगवान का तो मन चलाए मान होता नहीं है। भगवान तो आकर के पढ़ाते हैं मनुष्यों को। क्या पढ़ाते हैं? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो जो आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो जरूर आत्मिक स्थिति में रहते होंगे, साकार तो नहीं है। बनाने वाला सदैव निराकार है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है जो भगवान भगवती बनाते हैं। मनुष्यों ने ये इज्जत दे दी है, जो भगवान के साथ भगवती कह देते हैं। नहीं तो भगवान है एक निराकार, भगवती भगवान वो तो फिर शरीरधारी होने चाहिए, इसलिए फिर उनको देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहेंगे, परंतु भगवान तो एक बाप को कहा जाता है। बाप आकर के समझ देते हैं और पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। उनको महाराजा कहा जाता है, जो राजाओं के भी राजा बनते हैं। तुम कहते भी हो हम महाराजा बनेंगे, बाप भी कहते हैं हाँ बच्चे पुरुषार्थ करो, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ये है, इसलिए खूब पुरुषार्थ करो। समझते हो सारी डायनेस्टी यहां संगम युग पर स्थापन होनी है। बाप कहते हैं अभी तुम इस दुनिया में बहुत थक गए हो, अभी तुम चलो शांति धाम। जैसे सारा दिन मनुष्य काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, तो रात में जाकर सो जाते हैं, वो तो है स्थूल बात। यहां इस दुनिया में तुम आते हो तो बेहद का जागरण और बेहद की अज्ञान निद्रा में आते हो। वहां शांति धाम में ज्ञान नहीं रहेगा। जैसे तुम सो जाते हो तो कुछ ज्ञान नहीं रहता है, सोने के बाद तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाता है, शांति में चले जाते हो। सारी दुनिया को शांति का सुख का सहारा अभी एक ही है। तो मीठे मीठे बच्चों को अतीन्द्रिय सुख में खुशी में रहना चाहिए। कब कब दिल में आता होगा कि जल्दी सतयुग आ जावे तो हम जावे, परंतु नहीं, अभी तो बाप हमारे साथ है। फिर सतयुग में तो बाप हमारे साथ नहीं रहेगा। अभी तो जितना हम बाबा के साथ रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं हमको राजा बनाने के लिए। प्रजा भी जरूर बनानी है। इसे कलयुगी बंधन का नाता तोड़ना है, शूद्रों से नाता तोड़ना है और ब्राह्मणों से नाता जोड़ना है। ये सारी दुनिया शूद्रों की है। शूद्रों की दुनिया में कितनी खिटखिट है। इस दुनिया में ममत्व को तोड़ना बड़ी भारी हिम्मत चाहिए। परिवार को राजी रखने के लिए भी युक्ति से चलना चाहिए। समझो, परिवार वाले भक्ति न करने से नाराज हो जाते हैं, तो उनको खुश करने के लिए मंदिर में जाकर के शिव बाबा को याद करते रहो। क्या कोई कोई सोचते होंगे कि परिवार वाले नाराज होते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, तो बाबा ने रास्ता बता दिया। क्या रास्ता बताया? भले मंदिर में जाओ, परिवार वालों को खुश रखो, लेकिन अंदर में बाबा बाबा को याद करते रहो। ऊपर ऊपर तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन अंदर में शिव बाबा को याद करते रहो। चलो, मिल गई परमिशन। कोई विकार के लिए तंग करते हैं परिवार में, तो बोलो भगवान कहते हैं कि विकार, काम विकार, क्रोध विकार या लोभ विकार तुम्हारी शत्रु हैं। इनमें भी काम और क्रोध महाशत्रु है, इनको त्यागना है। तुमको तो त्रिया चरित्र बहुत आते हैं, किनको? माताओं को। बाप ने तुमको चरित्र सिखाए हैं। कल्याण करने के लिए झूठ बोलना पड़े, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने के लिए अनेक प्रकार की चतुराइयां तुमको बाप से खिलाते रहते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। आज की प्रातः सभा है 31 जुलाई 1968। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, कब? अब संगम युग में रूहानी बच्चों को रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को भी कौन प्यारे लगते हैं? रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं। रूहानी बच्चे किन्हें कहेंगे? हैं? रूहानी बाप किसे कहेंगे? हैं? हाँ, रूहानी बाप माना आत्मिक स्टेज में रहने वाला बाप। ब्रह्मा को रूहानी कहेंगे या जिस्मानी कहेंगे? है क्यों? ब्रह्मा की कोई भी चित्र में आत्मा जो निराकार है, उस निराकार आत्मा की स्पष्ट झलक जो चेहरे में दिखाई जाती है, जैसे धर्म पिताएं होते हैं, वो निराकारी झलक ब्रह्मा के चित्रों में नहीं दिखाई गई है, इसलिए कहेंगे साकारी बाप। रूहानी बाप किसे कहेंगे? जिसकी झलक रूहानी स्टेज में दिखाई जाती है, चित्रों में भी देखते हैं, चित्रों में विष्णु को भी मंदिर में दिखाया जाता है, शंकर को भी दिखाते हैं, लेकिन विष्णु की निराकारी स्टेज नहीं दिखाते हैं। कैसी दिखाते हैं? साकारी स्टेज दिखाते हैं, और शंकर की निराकारी स्टेज दिखाते हैं। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं, और बच्चों को रूहानी बाप प्यारा लगता है। जिस्मानी बाप प्यारा उतना नहीं लगता है। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का तुम बच्चे कल्याण कर रहे हो। बाप तो है ही विश्व कल्याणकारी, और जो भी कल्याणकारी होते हैं वो सभी को प्यारे होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वो किसी को प्यारे नहीं होते हैं। परमार्थी विश्व कल्याणकारी सभी को प्यारे होते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो। आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना, तो जरूर वो भी एक दूसरे को प्यारे लगेंगे। तुम्हारा बाहर वालों से इतना प्यार नहीं होगा। बाहर वाले मन जो रूहानियत की स्टेज को नहीं जानते हैं, रूहानी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रूहानी बाप को नहीं पहचानते हैं, उन दुनिया वालों से तुम्हारा इतना प्यार नहीं होगा जितना बाप बच्चों का आपस में प्यार होगा। तो तुम्हारा भी आपस में बहुत प्यार चाहिए। यहां ही अगर भाई भाई लड़ते रहते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो कहेंगे कि वो भाई भाई नहीं ठहरे। तो बच्चों में आपस में आत्मिक लव होना चाहिए, क्योंकि बाप का भी आत्माओं से रूहानी लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में तो सभी आत्माएं एक दो के प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो सबकी पक्की प्रैक्टिस होती है, जन्मजात प्रैक्टिस होती है। क्या? अपन को आत्मा समझने की। वहां तो सबका देह का अभिमान टूटा हुआ होता है, देह किसी को याद ही नहीं होती। अभी तुम भाई भाई एक बाप को याद करके सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाए रहे हैं। वो दुनिया भी ब्रदर्स तो आपस में मिल्कियत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपने अपने हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहां तो बेहद का बाप कोई हद की प्रॉपर्टी लेकर नहीं आया हुआ है। यहां कोई तुम्हारी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। हर एक को बाप से प्राप्ति करने के लिए डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। क्या बाप से बेहद की प्राप्ति करनी है तो इनडायरेक्ट कनेक्शन रखने की बात नहीं है कि दीदी दादी दादाओं के थ्रू कनेक्शन रखेंगे, नहीं, हरेक को बाप से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। ये बेहद की बात है। योग बल से तुमको बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हो। स्थूल वर्षा अल्पकाल का होता है, उस अल्पकाल के वर्षे के लिए तुम कितना लड़ते झगड़ते रहे। ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा, और हरेक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना व्यक्तिगत बाप को याद करेंगे उतना उतना वर्षा मिलेगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत माने क्या और अव्यक्तगत माने क्या? व्यक्त माने क्या होता है? व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे उसे कहते हैं व्यक्त, और बाप भी व्यक्ति बन करके आता है कि अव्यक्त ही रहता है, व्यक्ति बन करके आता है। तो उस व्यक्तिगत व्यक्ति में आए हुए बाप को जितना याद करेंगे डायरेक्ट उतना वर्षा मिलेगा। अगर बाप देखेंगे कि आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निर्धन के हो, तुम्हारा कोई भी धनी धोरी नहीं है। जो रूहानी बच्चे होंगे, रूहानी बाप के बच्चे होंगे, वो कब आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। अगर भाई भाई होकर और फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आपस में प्यार नहीं करते हैं, तो जैसे रावण के बच्चे बन जाते हैं। उनको कहेंगे वो सभी हैं आसुरी संतान, तो दैवी संतान में और आसुरी संतान में जैसे फर्क होता है, अगर लड़ते झगड़ते हैं तो फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनने से ही लड़ते झगड़ते हैं। आत्मा आत्मा से तो नहीं लड़ती है, देह अभिमान आता है तभी तो लड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी मत हो, अगर लून पानी होते हैं तो समझाया जाता है। बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हुए हैं तो हमारे बच्चे तो नहीं है, हमारे बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं? तुम 21 जन्म क्षीर खंड में रहते हो, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, विष्णु अर्थात आपस में संस्कार मिले हुए हैं, पारिवारिक नाता पक्का हुआ पड़ा है। रावण के बच्चे तो लून पानी हो जाते हैं, तो इस ज्ञान में तो देही अभिमानी बनकर के रहना है। अगर कोई की आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है, कहेंगे रावण संप्रदाय की शूटिंग कर रहे हैं, रिहर्सल हो रही है। आपस में लून पानी होने से बाप की पत गवावेंगे। बलीश्वरीय संतान अपन को कहते हैं, परंतु देखने में तो आसुरी गुण आते हैं, तो आसुरी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं या दैवी दुनिया की शूटिंग कर रहे हैं? वो होते हैं देह अभिमानी में, जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं उनमें ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तो तुमको बाप अपने साथ ले जावेंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर के आपस में लून पानी होकर के रहते हैं, वो तो ईश्वरीय बच्चे नहीं कहलाए सकते हैं, कितना अपन को घाटा डालते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी कभी कभी लून पानी हो जाते हैं। अभी यूं तो लून पानी सारी दुनिया है, फिर ईश्वरीय संतान भी लून पानी होते रहे तो बाकी उनमें फर्क क्या रहा, वो तो फिर बाप की और ही निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले सदगुरु निंदक कहे जाते हैं, और सदगुरु की निंदा करने वाले ठौर नहीं पा सकते। कौन सा ठौर? इसी जीवन में जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठौर तैयार होता है, उस ठौर में उनको ठिकाना नहीं मिलेगा, वो असुर बन जाते हैं। उन असुरों को नास्तिक भी कहा जाता है। नास्तिक होने से लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। आस्तिक होने वाले कब लड़ेंगे नहीं? तो न लड़ना यहां ही सीखना है। फिर वो संस्कार 21 जन्म तुम्हारे काम आवेंगे। 21 जन्म तुम्हारा आपस में प्यार रहेगा। बाप के बच्चे कहलाए, फिर आपस में भाई भाई नहीं बनते हैं तो उनको तो आसुरी संप्रदाय ही कहा जाएगा। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं। देह अभिमान के कारण उन बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है कि बाप मुरली चलाते हैं। माया देखो कितनी तीखी है, जैसे चूहा ऐसा काटता है, ऐसी ठंडी फूंक मारता है कि मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मुंह मीठी फूंक दे करके काटती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में एक दूसरे से रूस ना करना, एक दूसरे की बात न सुनना, ठुकराना, ये आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होते रहते हैं, फिर भी बाप कहते हैं अभी परफेक्ट तो कोई बना नहीं है। माया जरूर बार करती रहती है। ब्राह्मणियां जो सेंटर की हेड होकर के रह रही हैं, उनके साथ में जो दूसरे मददगार रहते हैं, उन मददगारों के साथ भी रूहानी प्यार चाहिए। रूहानी प्रेम न होने के कारण आपस में ठक ठक कर चलती रहती है। अगर ठक ठक चलती है तो वो आसुरी संप्रदाय ठहरे। तुम्हारा तो आपस में भाई भाई का प्यार रहे। ऐसा प्यार आपस में रहेगा तो जल्दी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बल शरीर में हो, शरीर में होते भी भाई भाई का प्यार हो। सेंटर की बड़ी ब्राह्मणियां व ब्राह्मण जो भी होते हैं, उनको फिर दूसरे सहायक मिलते हैं, तो उन सहायकों को बहुत प्यार से, रिगार्ड से चलाना है। अगर उनके साथ प्यार नहीं है, देह अभिमान है, तो कहेंगे कि ये भाई भाई कहां हुए। भाई भाई होंगे तो जरूर आपस में प्यार से चलेंगे। 31 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। तब आसुरी ख्यालात से एक दो को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो एक दूसरे की कमियां ही देखते रहते हैं। चेहरा सामने आया और खूबियां सामने नहीं आवेंगी, क्या सामने आवेगा? कमियां ही देखते रहेंगे। कोई कोई को तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपना कितना अहंकार आता है। बाप तो सबसे बड़ा है, ऊंच से ऊंच बाप है, और बाप को तो देखो कब नशा नहीं चढ़ता है। इतना बड़ा बेहद का बाप बच्चों से कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चों को नमस्ते करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सर्वेंट हूं। तो तुम बच्चों को भी आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। दूसरे जो भी साथ में रहते हैं उन पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से संभालना है। खान पान की भी उनकी बड़ी संभाल रखनी है, अपन को बड़ा नहीं समझना चाहिए। आपस में प्रेम से यहां चलेंगे तो प्रेम 21 जन्म तुम्हारा साथ चलेगा। कोई कोई ब्राह्मणिया अपन को बहुत ऊंच समझ करके दूसरों को नीच समझ करके चलती है। देही अभिमानी में कभी भी ऊंच नीच रहना नहीं होता है, बहुत प्रेम से रहना होता है। वहां शेर बकरी भल रहते हैं, वो ऊंच वो नीच, परंतु उनका भी आपस में बहुत लव रहता है। बाप तो देखो प्यार का सागर है, तो सभी को प्यार से ही चलावेंगे। और बाप का प्यार तो बहुत गुप्त भी है, प्यार ही सिखलावेंगे। कोई कोई ब्राह्मणियां गुस्सा करती है, कोई बीमार हो जाता है तो उनकी दवाई भी नहीं करती है, खाना भी पूरा नहीं खिलाती है। बाबा के पास तो सब प्रकार की रिपोर्ट्स आती रहती है। तो बाबा मुरली से सबको समझाए देते हैं, खबरदार करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कर्तव्य करने से गोया तुम आसुरी संप्रदाय बन जाते हो। बाप सिखलाते हैं आपस में प्रेम करना सीखो, नहीं तो बाप की निंदा करावेंगे। बल कोई कैसा भी है परंतु उसको दुख नहीं देना चाहिए, सुख देना है। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मैं पढ़ाने वाली हूं, नहीं। बाबा तो देखो इतना ऊंचा, फिर भी स्टूडेंट को भी नमस्ते करते हैं। अपन को ऊंच और दूसरे को नीच कब नहीं समझना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख फील होता रहेगा। अपन को सुखी रखते हैं और दूसरों को कुछ देते नहीं है। बाबा के पास सभी प्रकार के समाचार आते रहते हैं। ऐसे जो अपन को ऊंच समझ करके रहते हैं उनका पद नीच हो पड़ता है। ऐसी अवस्था में ऊंच पद पा ही नहीं सकेंगे। बाबा तो कहते हैं कोई को भी तंग नहीं करो, सदैव बाबा का भंडारा समझना चाहिए। भंडारा कोई हमारा नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है, और ये भंडारा सदैव भरपूर है, भरपूर ही रहेगा। कुछ भी जरूरत है तो बाबा के पास लिख करके मंगा सकते हो। बाबा हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो बाबा मदद देंगे। ब्राह्मणियों को बाबा सावधान कर रहे हैं। बहुत है, जो अपन को ऊंच और दूसरे की परवरिश नहीं करते हैं। अपनी देखो कितनी बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, दूसरों को कम करते हैं। कोई बीमार है उनकी दवाई न करना, उनको प्यार न देना, ये तो गोया का लून पानी होना हो गया। उस समय उनको आसुरी संप्रदाय कहें। आपस में प्यार होना चाहिए, दैवी गुण होना चाहिए, कोई न कोई डिफेक्ट्स तो सब में रहते हैं, क्योंकि पूरा पूरा बाप को तो कोई याद नहीं करते हैं। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा फूल बनना चाहिए, फूल नहीं बनते हैं, कांटे ही होकर के रहते हैं। दूसरे को दुख देना ये कांटा बनना है। बाप तो सभी को सावधानी देते हैं, नहीं तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप तो समझाने का हकदार है, कहते हैं पच्छड़ माल मन न बनो, सर्विसेबल बनो। सर्विस नहीं करते हैं, यज्ञ से खाते रहते हैं, फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो जरूर उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो ये बात सहन नहीं कर सकता कि ये जाकर के फोर्थ क्लास दास दासी आदि बने। तो बाबा मुरली में सावधानी देते हैं, अगर समझते नहीं है तो क्या कहेंगे, नहीं समझते हैं ये भी देह अभिमान। अगर बाप परिवार में नहीं होगा तो बच्चों को कैसे सावधान करेंगे। मुरली द्वारा, टैप द्वारा समझावेंगे ना, फिर आगे चल करके टेलीविजन भी होगा। टेलीविजन में सामने होकर के खड़े होकर कहेंगे और नाम भी लेंगे, नाम ले लेकर के कहेंगे तुम फलाने फलाने आपस में लून पानी होकर के लड़ते हो। लून पानी होने से सर्विस को धोखा आ जाता है, देह अभिमान से सर्विस अच्छी नहीं होती है। आपस में खीर खंड होकर के रहेंगे तो अच्छी सेवा होगी। बाप को तो सर्विस का बहुत फुरना रहता है। देह अभिमानी आसुरी संप्रदाय जो होते हैं वो बहुत नुकसान कर देते हैं। माया ऐसा माथा मोड़ती है जो पता ही नहीं पड़ता है कि हम डिस सर्विस कर रहे हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है, आपस में पारिवारिक प्रेम से रहते हैं व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो न बोलना अच्छा है। बाप कहते हैं हियर नो इविल, कोई उल्टा बोलता है तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, नहीं तो तुम असुर बन जाते हो। कहते हैं टाक नो इविल, उल्टा बोलने वाले को उल्टा जवाब न दो। परिवार में सामना नहीं करना चाहिए, परिवार में तो सहन करना होता है। असुर बन जाते हो तो दूसरों को असुर नहीं बनाना चाहिए। बाबा सिद्ध करके बतलाते हैं इनमें क्रोध का भूत है, इनमें वह पारिवारिक लव नहीं देखने में आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज अपना पोता मिल निकालो। आसुरी चलन से सुधरते ही नहीं है। तो आखिरी फिर नतीजा क्या निकलेगा, क्या पद पावेंगे, कहां विश्व के मालिक और कहां प्रजा के चंडाल। चांडाल भी तो बनते हैं ना, बताते हैं कि राजाओं के चांडाल अलग होते हैं, राजघराने के शमशान अलग होते हैं और प्रजा के शमशान अलग होते हैं। चांडालों का भी परिवार होता है, कोई ऊंच कुल के चांडाल, कोई नीच कुल के चांडाल, फर्क तो होता है। तो बाप समझाते हैं, कोई भी प्रकार की अगर सर्विस नहीं करेंगे तो तुम्हारा भी ये हाल हो जाएगा, कम से कम पद हो जाएगा। अभी भी अपने कर्मों का साक्षात्कार तो सभी को होता है, तुमको भी आगे चल करके अपने कर्मों का साक्षात्कार होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।